सऊदी हुकूमत के जंगी तैयारों ने एक बार फिर यमन के शहर अल हुदैदा पर बमबारी की है, जिसके नतीजे में मुतादिद आम शहरी शहीद और जख्मी हुए हैं। दूसरी जानिब यमनी फौज ने जवाबी कार्रवाई करते हुए दर्जनों सऊदी फौजियों को मौत के घाट उतार दिया।
यमनी जराए के मुताबिक सऊदी हुकूमत के लड़ाका तैयारों ने जुमे की शब सूबे अल हुदैदा के रिहायशी इलाकों पर बमबारी की, जिसके नतीजे में कम से कम 2 आम शहरी शहीद और 28 जख्मी हो गए। उधर यमनी फौज और अवामी रजाकार फोर्स ने सऊदी जारहियत के जवाब में सऊदी फौजी ठिकानों पर एक बैलिस्टिक मिजाइल से हमला किया है, जिसके नतीजे में दर्जनों सऊदी फौजी हलाक हुए हैं। अलहद न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक यमनी फौज के मिजाइल यूनिट ने ऐलान किया है कि सऊदी अरब के मुजरिमाना और बहीमाना हवाई हमलों के जवाब में यमनी फोर्सेज ने सऊदी अरब के फौजी ठिकाने पर एक और बैलिस्टिक मिजाइल से हमला किया, जिसके नतीजे में दर्जनों सऊदी फौजी हलाक हो गए। ये हमला मगरबी साहिली महाज पर किया गया है। दरियसना यमन के अवामी इनकलाबी तहरीक अंसारुल्लाह के तर्जुमान मोहम्मद अब्दुलसलाम ने मगरबी यमन के सवाहिल पर अमरीका, बरतानिया और फ्रांस के बहरी बेड़ों और जंगी जहाजों की मौजूदगी की तरफ इशारा करते हुए ताकीद के साथ कहा है कि यमनी अवाम मगरबी हिमायत याफ्ता जारह फौजियों के मुकाबले में इस्तेकामत और मुजाहमत पर फख्र करते हैं। उन्होंने कहा कि यमन के उमूर में अक़वामे मुत्तहिदा के नुमाइंदे ने अब तक बहरान यमन के हल के लिए कोई मौसर इकदाम नहीं किया है और अब तक उनके तमाम इकदाम यमन के खिलाफ कायम सऊदी इत्तेहाद की कार्रवाइयों की पर्दापोशी के मिस्ताक बने रहे हैं। यमन की अवामी इनकलाबी तहरीक अंसारुल्लाह के सरबरा अब्दुल मलिक बदरुद्दीन अल हौसी ने भी कहा है कि यमन की असल जंग अमरीका और शाहीन हुकूमत से है, जबकि दीगर ममालिक यमन पर जारहियत करने के लिए इन हुकूमतों के आलाकार हैं। इसी असना में सऊदी इत्तेहाद की जारहियत के जवाब में यमनी फौज और अवामी रजाकार फोर्स ने मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयां करते हुए सऊदी इत्तेहाद के मुतादिद फौजियों को हलाक कर दिया है, जिनमें कई सऊदी फौजी भी शामिल हैं। यमनी फौज और अवामी रजाकार फोर्स ने जनूबी सऊदी अरब के इलाकों असीर और जीजान में 6 सऊदी फौजियों को मौत के घाट उतारा है। जनूबी यमन के सूबे लहज में भी सऊदी इत्तेहाद के फौजी ठिकानों पर किए जाने वाले हमलों में मुतादिद फौजी हलाक और जख्मी हुए हैं। यमन के एक फौजी जरिए का कहना है कि यमनी फौज और अवामी रजाकार फोर्स ने अल हुदैदा में सऊदी इत्तेहाद के फौजियों के मुकाबले में घात लगाकर हमला करके कई फौजियों को हलाक और जख्मी किया है। सऊदी इत्तेहाद के 20 फौजी गाड़ियों को भी तबाह कर दिया गया है। एक और रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी इत्तेहाद के फौजी हर तरह की कोशिश करने के बावजूद अल हुदैदा के एयरपोर्ट पर कब्जा करने में कामयाब नहीं हो सके हैं। वाज़ह है कि अल हुदैदा में ऐसी हालत में शदीद झड़पों का सिलसिला जारी है कि इस इलाके में मुमकिन इंसानी अलमिये पर आलमी सतह पर तश्वीश का इजहार किया जा रहा है। काबिल जिक्र है कि यमन की अल हुदैदा बंदरगाही एक ऐसा जरिया है जहां से इस मुल्क में इंसान दोस्ताना इमदाद पहुंचाए जाने की कोशिश की जाती रही है।
और नाजरीन, यमन पर सऊदी जा रही है तो और यमनी फौज की जानिब से जवाबी कार्रवाई पर गुफ्तगू के लिए इस वक्त स्टूडियो में मौजूद है हमारे साथी और मुमताज तजिया निगार अजीम सबसवारी। अजीम सबसवारी, स्टूडियो में आपका खैर मकदम है।
शुक्रिया।
जैसा कि आप जानते हैं कि सऊदी इत्तेहाद के हमले मुसलसल जारी हैं यमन के ऊपर, तो आखिर सऊदी इत्तेहाद चाहता क्या है, सऊदी अरब चाहता क्या है?
देखिए, जो ताज़ा कार्रवाई अल हुदैदा में शुरू की गई है, एक महीने पहले से इसका सऊदी इत्तेहाद और उसके जो मीडिया है वो बड़ा शोर मचा रहा था कि हमने जो है वो एक कार्रवाई शुरू की है अल हुदैदा में और अल हुदैदा की एयरपोर्ट और ख़ास तौर से इस बंदरगाह को हम जो है वो अपने कब्जे में लेना चाहते हैं। तो जाहिर है कि उसी वक्त से ये ख़तरा मौजूद था और आलमी इदारे इस बात पर जो है वो काफ़ी उनकी जानिब से रद्दअमल सामने आ रहा था कि अगर अल हुदैदा की बंदरगाह जो है और उसका एयरपोर्ट भी बंद कर दिया गया लड़ाई के नतीजे में, लड़ाई की शिद्दत के नतीजे में जाहिर है कि इम्कान बाकी नहीं रहेगा, तो यमन के लिए इंसान दोस्ताना इमदाद की फराहमी का जो वाहिद रास्ता है वो भी मुनक़ता हो जाएगा। क्योंकि 70% की जो इमदाद है अब तक, 70% के करीब जो आलमी इमदाद है, जो आलमी इदारों के तबस्सुत से जाती है, वो अल हुदैदा की बंदरगाह के ज़रिए ही जाती है। क्योंकि बाकी इलाकों का जो है वो इन्होंने फ़ज़ाई मुहासरा कर रखा है और वहाँ से इमदाद पहुँचाना मुमकिन नहीं है। इसी तरह आबनाए बाबुल मंदब से भी जो है वो कोई इमदाद जो है पहुँचाई नहीं जा सकती, क्योंकि वो उस महासरे में है। और ये वो वाहिद इलाका अल हुदैदा का है कि जो इस वक्त अंसारुल्लाह के कंट्रोल में है, अल हुदैदा और उसकी बंदरगाह। लिहाजा ऐसा दिखाई देता है कि सऊदी इत्तेहाद को, चूंकि पिछले 4 बरस के दौरान जो अवामी इस्तकामत और मुज़ाहमत का सामना करना पड़ा है अपने हमलों के सिलसिले में, अब वो अवाम को इसकी सज़ा देने के लिए जो आखिरी रास्ता है उसको भी ख़त्म करना चाहते हैं, ताकि अवाम की जो ان کا گلا گھونٹ دیا جائے اور ظاہر ہے کہ عوامی پریشر پڑے اور انصار اللہ اور اس کی جو حامی جو فورسز ہیں خاص اور یمنی فوج جو اس وقت صنعاء سے جس کو کنٹرول کیا جا رہا ہے تو وہ ہتھیار ڈالنے پر مجبور ہو جائیں یا کسی ایسے معاہدے کو قبول کر لیں جو سعودی اتحاد چاہتا ہے. اس میں سب سے بڑی جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت صرف سعودی اتحاد نہیں ہے اس میں, یعنی اگر آپ دیکھیں جو اس وقت تازہ ترین خبریں آ رہی ہیں ان کے مطابق امریکی فوج ہے, فرانسیسی فوجی دستے ہیں, القاعدہ کے اسپلنٹرس گروپ ہیں اس کے اندر, اور اس کے علاوہ جو سعودی عرب کے حمایتی یافتہ منصور ہادی ہیں ان کے وفادار فوج ہے
جی.
اور ساتھ ہی متحدہ عرب امارات کی ایک فوج ہے, اس کے علاوہ ایک بٹالین جو ہے سوڈان کی ہے. اچھا, متحدہ عرب امارات اور سعودی عرب کی فوج کے اندر جو لوگ موجود ہیں جو فوجی ہیں وہ سب کے سب کرائے کے ہیں, یعنی ایک پورا ایک محاذ ہے یمنی عوام کے خلاف اور یمنی عوام کی نمائندہ تنظیموں کے خلاف, یمنی حکومت کے خلاف, کہ جو اس وقت پوری شدت کے ساتھ جو ہے وہ اس بات کی کوشش کر رہا ہے کہ یمنی عوام کو امداد رسانی کا آخری راستہ جو ہے اس کو بھی بند کر دیا جائے. یہاں پر ایک اور جو سب سے بڑی بات ہے وہ یہ ہے کہ اس پورے پروپیگنڈے کے اندر کئی بار جو ہے وہ جو ان کے اخبارات اور جرائد ہیں جو ذرائع ابلاغ ہیں انہوں نے اس بات کا پچھلے چند دوران خاص طور سے بدھ سے اب تک کئی بار دعویٰ کیا کہ انہوں نے جو ہے وہ الحدیدہ کے ایئرپورٹ پر قبضہ کر لیا ہے, اور لیکن اس کے بعد حقیقت جو میدانی حقیقت ہے وہ کچھ اور ہے. میدانی حقیقت یہ ہے کہ وہ اب تک اس پر قبضہ نہیں کر پائیں. البتہ ظاہر ہے کہ جیسا کہ انصار اللہ کے جو سربراہ ہیں عبدالملک بدر الدین الحوثی اور محمد علی الحوثی دونوں کے بیانات سامنے آ چکے ہیں کہ اس وقت امریکی, فرانسیسی اور برطانوی بحری بیڑے جو ہیں وہ الحدیدہ کی بندرگاہ کے اطراف میں تعینات ہیں اور مسلسل بمباری کی جا رہی ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ اس وقت گھمسان کی جنگ جو ہے وہ الحدیدہ میں ہو رہی ہے, خاص طور پر درحمی کے علاقے کے اندر, کہ جو ایک مثلثی علاقہ ہے جہاں سے پینیٹریٹ کرنے کا واحد راستہ سعودی اور اتحاد اور ان فورسز کے لیے ایک وہی تھا. لیکن اس میں بھی جو تازہ ترین اطلاعات آ رہی ہیں وہ یہ ہے کہ یمنی فوج نے جو ہے وہ دونوں طرف سے ان کا محاصرہ کر لیا, یعنی یمنی فوج اور انصار اللہ کے جو جوان ہیں یعنی عوامی رضاکار فورس کے جو جوان ہیں انہوں نے آگے اور پیچھے دونوں طرف سے سعودی فورسز کا جو ہے محاصرہ کر رکھا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اتنی شدید بمباری جو اطراف میں کی جا رہی ہے امریکہ اور اس کی جو بحری بیڑے کی جانب سے اور انٹیلیجنس کی جو کمک ان کو پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے, اس کی بنیادی وجہ بھی یہی ہے کہ یہ جو سعودی اتحاد کے جو فوجی ہیں وہ اس وقت یمن کی فوج کے محاصرے میں ہیں, لہٰذا ان کو بچانے کے لیے کچھ نہ کچھ اقدام کیا جا رہا ہے. اور خود اب اس بات کو یہ لوگ تسلیم کر چکے ہیں کہ یمنی یعنی یمن کے اندر ان کو مزاحمت کا سامنا ہے, خاص طور سے الحدیدہ کے اندر, اور جو حدیدہ کا ایئرپورٹ ہے اس پر وہ اب تک قبضہ نہیں کر پائیں بلکہ اب وہ ان کی بمباری کی رینج میں آ گیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یمن کی جو حکومت ہے صنعاء میں اور یمن کی جو فوج ہے اس نے ان کو بڑا ٹف ٹائم دیا ہے, کیونکہ یہ بہرحال یہ ایک حیاتی مسئلہ ہے اور میں نہیں سمجھتا کہ یہ مسئلہ اتنی آسانی سے جو ہے وہ حل ہوگا. اس میں ایک جانب میں صرف اشارہ کرنا چاہوں گا اور وہ یہ ہے کہ اس میں اقوام متحدہ کا کردار انتہائی جو منافقانہ ہے, اور اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کے جو خصوصی نمائندے مارٹن گریفتس وہ اس وقت یمن پہنچے ہیں اور ان کی انہوں نے وہاں مذاکرات کی ہیں یمنی فورسز سے, خاص طور سے انصار اللہ کے رہنماؤں سے, اور ان کی کوشش اس میں یہی رہی ہے کہ یمن کی انصار اللہ کو جو ہے وہ ہتھیار ڈالنے پر آمادہ کیا جائے, جو کہ امکان پذیر دکھائی نہیں دیتا.
بہت بہت شکریہ آپ کا.